Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, किसी ने कहा है कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। यदि हम डर के भाग जाते हैं तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यदि हम संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, तो जरूर सारा संसार हमारे सामने नतमस्तक होगा, आज नहीं तो कल। और वैसे भी लड़ने वालों से ही सभी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। लड़ने का अर्थ है संघर्ष करना, क्योंकि जीवन में हार और जीत तो होता ही है, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा खड़ा रहता है, आगे बढ़ता है और विश्वास को कायम रखता है, जीत अवश्य उसकी होती ही होती है। आपने देखा होगा बॉक्सिंग रिंग में जब कोई दो लोग लड़ते रहते हैं और एक बॉक्सर जो है बहुत अच्छी तरह लड़ रहा है, दूसरा बॉक्सर यदि घूसे पे घूसा खाए जा रहा है, जब वो गिर जाता है उसके बाद जब वो उठता नहीं है तभी उसकी हार मानी जाती है। यदि वो बार बार खड़ा होता है, लड़ने का जज्बा रखता है, तब तक उसकी हार नहीं मानी जाती है। तो हम भी लड़ें अवश्य, क्योंकि जो लड़ता है सचमुच विजय उसकी अवश्य होती ही होती है। और ये बात भी कही ही गई है कि यदि हम संघर्ष करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्तियाँ भी हमारा साथ देती हैं और परमात्मा का भी साथ हमें अवश्य प्राप्त होता है। तो एग्जाम के दिन नज़दीक आपके आ ही रहे हैं, तो आप सबके अंदर भी ऐसा ही विश्वास, ऐसा ही जोश अवश्य होगा और आप सब अच्छी तैयारी कर ही रहे होंगे। हम सबकी दुआएं और शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ रहती हैं। आइए कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक यू
भ्राता जी। ये वाली जो बात है, एक हार ना मानने वाली और सतत संघर्ष करके आगे बढ़ने वाली, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाती है हार मान लेने की बजाय।
और विद्यार्थियों में तो ये बचपन का काल काफी उमंग उत्साह से भरा हुआ होता है
जी।
बस उस उमंग उत्साह को इस ओर डाइवर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो अब बहुत सुंदर समय है और सारे देश में एक दूसरा ही माहौल है। एग्जाम आ रहे हैं, सबके घर में टीवी कम हो गई है, टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया गया है, माँ बाप अटेंटिव हैं, पूरा केयरफुल हैं, उन्हें किसी भी तरफ से कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो देश में एक माहौल ही अलग होता है। और अनेक युवकों में बहुत अच्छा जज्बा कुछ कर दिखाने का ये भी होता है। 10th के, 12th के और कॉलेजों के एग्जाम्स के साथ कोई CA का फाइनल दे रहा, कोई IAS की तैयारी कर रहा है, और भी कई MBA में हैं, फाइनल सेमेस्टर है, भिन्न भिन्न तरह के एग्जाम्स होते रहते हैं। और उसमें मनुष्य की सचमुच एक परीक्षा होती है, कईयों को वो संघर्ष भी लगता है, लेकिन बहुत बोल्ड रहना, और इसमें हमारी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा मदद करती है। जैसे ही हम ये याद करते हैं कि हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, तो हम में एक विशेष बल आ जाता है। जैसे शेर का बच्चा, वो गीदड़ नहीं हो सकता, उसमें बल रहता ही है। किसी कारण से भी अगर वो अपने को कमज़ोर महसूस करता हो तो अपने बाप को देखते ही पुनः उसमें वो जागृति आ जाती है। हम भी याद किया करें, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, उसकी संतान हैं, देयरफॉर वी आर आल्सो वेरी पावरफुल। ये फीलिंग हम आप चलते फिरते अपने को देते रहें, इससे हमारा मनोबल बढ़ा चढ़ा रहेगा। साथ में ब्रेन को भी बहुत एफिशिएंट रखना आवश्यक है। हम इस बात की चर्चा करते ही रहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का ब्रेन थोड़ा वीक और पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा, तो दोनों में एक बैलेंस नहीं रह पाता, तो इससे बच्चों को घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है। तो अपने ब्रेन को भी ठीक से रखना चाहिए, और इसके लिए एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, घर में दूध है तो दूध पीना, केवल चाय नहीं, चाय से कुछ एनर्जी नहीं मिलती बॉडी को, अगर चाहिए तो दूध पिए, थोड़ा भोजन भी पौष्टिक हो जाए, छटपटाई नहीं, जो एनर्जी दे, और नींद बहुत अच्छी हो जाए। आजकल क्या होता है कि घर घर में टीवी है, अभी लोग कईयों को तो एक दो कमरा होता है घर में, कईयों को तो एक कमरा, उसी में टीवी भी है, लोग टीवी भी देख रहे हैं, बच्चों को उसमें पढ़ना भी है, संघर्ष भी चलता है, वो कहेंगे टीवी बंद करो, वो कहेंगे नहीं हमें देखनी है, तो इसमें बच्चों की नींद पर बुरा असर आ जाता है। तो एक अच्छी साउंड स्लीप ब्रेन को एनर्जी देती है और अपने ब्रेन को निगेटिविटी से भी मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि जितने निगेटिव थॉट्स ब्रेन में चलते हैं, जितनी थॉट्स की स्पीड ज़्यादा होती है, मन भी वीक, ब्रेन भी वीक पड़ता है और फिर ये पढ़ाई में अनेक तरह की बाधाएं आती हैं।
आपने कहा व्रता जी नींद पर्याप्त लें, लेकिन ज़्यादातर जैसे अभी हमारी परीक्षा की बात हो रही है, जब परीक्षा के दिन आते हैं तो बच्चों को बहुत कुछ रिवाइज करना होता है, लोड बहुत होता है, तो ऐसे में वो देर रात तक पढ़ते हैं और फिर जल्दी भी उनको उठना होता है, तो यहाँ फिर क्या सजेस्ट?
हाँ, इसमें मेरा सजेशन ये है कि एग्जाम के समय नींद को बहुत काटेंगे नहीं। कई बच्चे 4 घंटे ही सोते हैं, मान लो कल पेपर है, आज इतने पढ़ रहे कि 4 घंटे ही सोए हैं, तो क्या होता है फिर मनुष्य को एक विशेष समय पर थकान फील होने लगती है, ब्रेन भी थका थका रहेगा और फिर जो उसने याद किया है ना वो पूरा याद नहीं आएगा और लिखने में मिस्टेक ज़्यादा होंगी। इसलिए कुछ भी हो, बच्चों को 6 घंटे नींद एग्जाम के दिनों में अवश्य करनी चाहिए। 7 हो तो बहुत अच्छा है, पहले भले ही वो कटें लेकिन एग्जाम के दिनों में नहीं, अन्यथा देखते हम लोग भी देखते हैं ना, कभी हमारी नींद कम हुई हो और हम ईश्वरीय महावाक्य सुनने गए हों तो मजा ही नहीं आता। तो अगर हमें आनंद ही नहीं आ रहा होगा, हमारा मन फ्रेश ही नहीं होगा, ब्रेन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त नहीं फील कर रहा है, तो वो जो हमने मेहनत की है बहुत ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए मैंने कहा 6 घंटे तो अवश्य, अगर आपको 7 बजे पेपर देने जाना है और 6:45 आपको उठ के तैयार होना है तो आप इस अनुसार लक्ष्य बना लें कि 11 बजे आप सो ही जाएं और फिर उठें तो जितना याद किया वो याद रहेगा और एंजॉय करें।
रिवाइज ही नहीं हो पाया है तो मन में रहता है कि क्यों ना एक बार सारा रिवाइज कर ही लिया जाए, उसके बाद या तो सोया जाए या फिर सुबह उठ के भी उसको पूरा कम से कम कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि एक डर रहता है कि कहीं वहाँ से आ गया और मैंने रिवाइज नहीं की है तो क्या होगा।
ये होता है, पर अगर हम अपनी बुद्धि में बहुत अच्छा संतुलन बनाए रखें तो जो चीज हमने 2-4 बार पढ़ ली थी, रिवाइज कर ली थी, वो समय पर हमें अवश्य याद आ जाएंगी, ये भी हमें संकल्प रखना ही चाहिए। और जो मैंने एक अभ्यास बताया था, एग्जाम से पहले पुनः अभ्यास कर लें, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। अब अपनी बुद्धि को कहें, हे मेरी बुद्धि, जो मैंने पढ़ा है अब परीक्षा के समय तो सब इमर्ज कर दे, और 3 बार ये याद कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और जो बच्चे राजयोग करते हैं वो बाबा का आह्वान कर लें, आ जाओ बाबा मेरे साथ आ जाओ, अब मुझे मदद करना, मेरा हर आंसर परफेक्ट हो, ऐसे अपने को फ्रेश करेंगे। ज़्यादा रटते रहना उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं हो, बुद्धि ग्रहण कर ले, इस ढंग से हम पढ़ें तो भले ही हमने बार बार रिवाइज न भी किया हो, समय पर वो सब याद आ जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल प्रता जी, एक चीज़ और आपने कही थी कि शायद लोड ज़्यादा है पढ़ाई का लेकिन मेरी बुद्धि की क्षमता थोड़ी सी कम है, तो शायद यहाँ व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। यदि ऐसी स्थिति बन गई हो स्टूडेंट्स की कि लोड ज़्यादा है पढ़ाई का, बुद्धि उतनी ज़्यादा विकसित नहीं है, लोड पड़ता चला जा रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करें?
देखिए, पहले से ही ध्यान देना पड़ेगा, हर बच्चे को उसके माता पिता को ये पता रहता है मेरा बच्चा सेकेंड क्लास का है या 3rd क्लास का, केवल पास मार्क्स लाने वाला है या इसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है 8वीं क्लास तक बहुत सुंदर मार्क्स आए, 10वीं तक भी बहुत अच्छे आ गए, 11वीं में आते ही सब डाउन होने लगा। इसके तो भिन्न भिन्न कारण जो हमने गिनाए वो सब रहते ही हैं। फिर भी हर एक अपनी बुद्धि के लेवल को ध्यान में रखते हुए थोड़ा पहले से तैयारी प्रारंभ कर दे, 15 दिन पहले से नहीं, कम से कम 2-3 मास पहले से तैयारी अच्छी करने लगे तो बुद्धि जो 2nd क्लास लेवल की है वो भी बहुत चीज़ों को ग्रहण कर ले और कम से कम गुड 2nd तो उनकी आ ही जाए।
बिल्कुल, मतलब ये अभ्यास भी करके वो इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रता जी, मैं कुछ मेल्स आए हैं उनकी ओर आपको लिए चलता हूँ। ये पहला एकता गोयल जी हैं पानीपत से, कहती हैं कि आई वर्क रियली हार्ड बट आई डोंट परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स। वाई दिस इज़ हैपनिंग विद मी, तो ये भी एक बड़ा सा प्रश्न, शायद कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन एक फिर से प्रश्न आया हमारे
पास। नहीं नहीं ये है, और कई लोग इसको सोचते हैं कि भाग्य हमें साथ नहीं देता, कई सोचते हैं भगवान हमें साथ नहीं देता, पता नहीं वो हमसे क्यों रुष्ट है, हमसे कमजोर जो थोड़े हल्के हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हम जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, जिनका सदा ही बिल्कुल अच्छा रहा है, उनको अब असफलता मिल रही है, तो कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होती है ज़रूर। मैं इसमें कहूँगा कि पूरा ही समय आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को जरा राजयोग का मेडिटेशन करके अपने चित्त को शांत किया करें। जब हमारा चित्त शांत हो जाता है तो हमारी बुद्धि परफेक्टली वर्क करने लगती है। एक तो ये काम करें और दूसरा सवेरे उठकर जो हम सिखाते रहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ अच्छे अच्छे संकल्प दे दें, और ऐसे केसेज में आँख खुली और अपने परम पिता को शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करके उनकी शुक्रिया करनी चाहिए, तुमने मुझे बहुत अच्छी बुद्धि दी, बहुत अच्छा भाग्य दिया, मुझे हर कदम पर सफलता दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वयं भगवान मेरे साथ है, मुझे सब कुछ अच्छा होगा, मुझे सफलता मिलेगी, अब मेरा परफॉर्मेंस बहुत सुंदर होगा, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा होगा, रोज तीन तीन बार ये संकल्प करें तो कहीं भी जो ब्लॉकेज हो गया है वो ओपन अप हो जाएगा और इनका सब कुछ अच्छा होने लगेगा।
जी चलिए, इनको भी बहुत उम्मीद तो होगी भ्राता जी कि इस बार इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, तो निश्चित रूप से एक तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि इस बार सचमुच बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो। भ्राता जी ने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दी है उसका जरूर आप अभ्यास कीजिएगा। भ्राता जी अगला हमारे पास जो मेल आया है वो कोलकाता से है जॉय चटर्जी जी का, और ये कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स व्हेन आई रीड बट आई कैन नॉट रिटेन इट इन द एग्जाम। फिर से वही बात है, सब कुछ समझा है लेकिन मतलब ये क्या है ऐसा, वो समझ वाली बात नहीं आती भ्राता जी। सब कुछ समझ रहे हैं, मेहनत भी अच्छी हो रही है, एकता ने भी यही बात कही थी, और फिर से जॉय ये बात कह रहे हैं कि वहाँ मैं रिटेन नहीं कर पाता।
हाँ, या तो इन लोगों में वहाँ नर्वसनेस आ जाती है या कुछ ऐसा प्रेशर अपने पर ये डाल देते हैं कि वो चीज़ भूलने लगती हैं और वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती।
क्या ऐसा तो नहीं भ्राता जी कि क्वेश्चन ज़्यादा है, समय कम है, तो इस हड़बड़ाहट
में कई बच्चे नर्वस होते हैं जो हायर कंपटीशन देते हैं। आईएएस वालों की भी यही होती है कि भाई 400 क्वेश्चंस हैं और इतना समय है, 3 घंटे मुझे करना है, तो पहले क्या करूँ, ये पहले पढ़ लूँ या पहले आंसर देता चलूँ। इस घबराहट में कई लोग बहुत गड़बड़ कर देते हैं, तो इस चीज़ की बहुत आवश्यकता होती है कि एग्जाम के समय में, मान लो 7 बजे एग्जाम शुरू हो रहा है और 7 बजे आप वहाँ पहुँच गए, तो 7 से और 7:05 तक का 5 मिनट का समय बहुत शांति में और सुंदर स्थिति में बिताएं। कई लोग उसमें ही घबरा जाते हैं, अब पेपर बट रहा है उसमें घबराहट हो रही है, पता नहीं कैसा है, इधर उधर दे, चेहरे पर इफेक्ट आ जाता है। तो ये 5 मिनट जो पहले हैं इसमें अपने मन को बहुत अच्छी सेटिंग में ले आए, सफलता हमें होगी, आई विल एंजॉय दिस पेपर, आई विल आंसर एवरीथिंग वेरी नाइसली परफेक्टली, अच्छे अच्छे विचार पैदा करें, मेरे साथ तो स्वयं से बाबा है, उसने मुझे सफलता का वरदान दिया है, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस तरह के विचारों से अपने को एनर्जेटिक करें। वो 5 मिनट जो है बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक बार अगर मन उखड़ गया तो 3 घंटे ही उखड़ा रहेगा, ये बहुतों के अनुभव आते हैं, फिर वो स्थिरता आएगी नहीं और गलती पे गलती होती जाएगी, 50 और 3 52 ही लिखते रहेंगे बार बार, 51 और 4 53 लिखते रहेंगे और समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, फाइनल रिजल्ट तो मिल नहीं रहा। तो बस ये 5 मिनट सभी विद्यार्थी, 5 मिनट ज्यादा नहीं होता, अगर ये 5 मिनट मनुष्य अच्छी मनोस्थिति में बिताएंगे तो 10 मिनट बचेंगे, पहले ही काम हो जाएगा, क्योंकि माइंड बहुत बैलेंस में रहेगा। और जैसे मैंने कहा ये सभी विद्यार्थियों को सदा ही करना चाहिए, पर एग्जाम से 15 दिन पहले से तो रोज सवेरे उठकर ऐसे सुंदर विचारों से अपने को एनर्जेटिक करना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल पता जी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बिल्कुल हॉल में एंटर करने तक भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। ये ठीक है या उसको थोड़ा सा किनारे करके, जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर लिया जाए, वो ठीक रहता है?
बिल्कुल, अपनी बुद्धि को तैयार करना ज्यादा अच्छा रहेगा, मुकाबले वशिष्के के रटते ही जाएं। जैसे एक छोटी सी कहानी सबके साथ होती है, हमारे साथ भी हो चुकी है कि कोई काम करना और कहा था कि आज फलाने नाम का व्यक्ति मिलने आ रहा है, उसको इस नाम से पुकारना है, और हम उसे याद करते जा रहे, टीना आएगा, फिर 10 बार याद किया टीना आएगा, तो जब वो आया तो नाटी रह दिए क्या हो गया, बहुत बहुत याद कर रहे थे, अरे नहीं मैं टीना हूँ, ओह सॉरी भाई आप टीना हो ना, ठीक है आपसे मिलना था। ये बहुतों को होता है कि बहुत ज्यादा करने से बहुत फायदे नहीं होते, एक दो बार ही करना। तो जैसे मैंने कहा, ये दो चीज सब विद्यार्थी करेंगे, सवेरे अपने को एनर्जेटिक, चिंताओं से मुक्त, अब हमने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, और फिर फाइनली ये भी कर सकते हैं, अब परिणाम ऊपर वाले के हाथ में, वो हमारे अच्छी मेहनत का फल तो हमें देगा ही, क्योंकि वो तो न्याय करने वाला है, तो बस हमने अच्छी तैयारी कर ली है, परिणाम अच्छा ही होगा।
जी 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 प्रीति जी, ये एक अच्छी काउंसलिंग वाली बात हो जाती है, मतलब मूल बात यही रहा कि मन को शांत रखें, बुद्धि को स्थिर रखें, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। कई स्कूल्स में, कॉलेजेस में काउंसलिंग भी दी जाती है बच्चों को इससे, एग्जाम से पहले, क्या ब्रह्मा कुमारीज में भी ऐसा कुछ है? प्रीति जी आप बता रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि यदि बच्चों को थोड़ा पहले से, एक मास दो मास से या वर्ष के प्रारंभ से ही कुछ ऐसी चीज, टेक्निक सिखा दी जाए, तो उन्हें ये फियर वाली चीज रहेगी?
देखिए, जब हमारे यहाँ बच्चों के शिविर लगते हैं तभी वो सिखाते हैं, लेकिन वो एग्जाम से पहले नहीं होते, वो एग्जाम के बाद लगते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी बातें यहाँ सिखाई जाती हैं, और बहुत अच्छे बच्चे जो उन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं काफ़ी अच्छा परिणाम लाते हैं। एक चीज़ मुझे और याद आ रही है कि मान लो कल मैथमेटिक्स का पेपर है या इंग्लिश का पेपर है, और वो विद्यार्थी इंग्लिश या मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, तो पहले से ही उसने एक मेंटेलिटी बनाई हुई है, मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं 2-3 क्वेश्चन भी मैं हल कर पाऊँगा या नहीं, पास मार्क्स भी आएंगे या नहीं, ये नहीं करना है। अब क्या करना है, सवेरे उठते ही 7 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैथमेटिक्स में होशियार हूँ, मैथमेटिक्स मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, या इंग्लिश जिस सब्जेक्ट में उन्होंने कर लिया ना, उन्हें सबकॉन्शियस माइंड में समा दिया है, भाई मैं तो इंग्लिश में बड़ा पुअर हूँ, नो इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, मुझे इंग्लिश पढ़ने में बहुत रुचि है, अरे ये तो मेरी अपनी लैंग्वेज बन गई है, अब ये तो मेरे लिए बिल्कुल ईजी हो गई है। सवेरे उठ के 7 दिन भी करेंगे ना, तो ब्रेन की वो शक्तियाँ जो उस फील्ड में काम नहीं कर रही हैं काम करने लगेंगी, और उस फील्ड में भी बच्चे होशियार होंगे। वैसे सदा के लिए ही मैं ये बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो बच्चे ये भर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, और मेरे 4 सब्जेक्ट अच्छे पर मैथमेटिक्स देखते ही डर लगता है, वो इसको चेंज करें, और जो मैंने बताया उसका अभ्यास करेंगे, तो ब्रेन में ये सब शक्तियां हैं, वो जिस ब्लॉक हो गई हैं या हमने इस तरह के विचार कर करके उनको ब्लॉक कर दिया है, तो वो ओपन हो जाएंगी, और उस सब्जेक्ट में भी हम काफी
अच्छे हो जाएंगे। ये बहुत गहरी बात आपने बता दी बेटा जी, क्योंकि शायद ये होता ही है, हर एक के साथ होता है, बचपन से मान लीजिए मैं किसी सब्जेक्ट में कमजोर हूँ, पुअर हूँ, तो मैं बोलता भी रहता हूँ कि ये सब्जेक्ट पुअर है या रुचि नहीं है, और मन में तो ये रहता ही है। तो ब्रता जी, विशेष करके मानसिक रूप से तो हम ये परिवर्तन लाए ही, क्या बोल के माध्यम से भी कई बार हम बोलते भी रहते हैं कि भाई इसमें मैं कमजोर हूँ, तो इसको भी चेंज किया जाए,
मैं
बोल
कह रहा हूँ कि माँ बाप भी बोलते हैं हमारा बच्चा बाकी सब चीजों में बहुत अच्छा, बस इंग्लिश में कच्चा है, अभी इसको इंग्लिश मीडियम में भेज नहीं सकते, ये पता नहीं इंग्लिश में फेल ना हो जाए, तो और भी कहेंगे, अब वो खुद भी अब स्वीकार कर
फेल होके दिखा देता है
स्वीकार कर लेता है कि भाई ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है। तो जैसे मैंने कहा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे शक्तियाँ जागृत हो गई, फिर मैं बुद्धिमान हूँ, अब वो शक्तियाँ बुद्धि को अफेक्ट करने लगी, और मैं मैथमेटिक्स में बहुत होशियार हूँ, मुझे इसमें बहुत रुचि है, मैं इस सब्जेक्ट को बहुत एंजॉय करती हूँ, ऐसे सुंदर सुंदर विचार करें, तो बुद्धि जो जागृत हो गई थी और एनर्जेटिक हो गई थी, अब वो जो उसका केंद्र है जो मैथमेटिक्स के लिए तैयार है वो खुलने लगेगा, उसमें इंटरेस्ट पैदा होने लगेगा। और मैथमेटिक्स की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, भारी लगती है, देखते लगता ओ ये क्या है, वो सब इजी लगने लगी।
जी 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 दादा जी, एक मेरा फ्रेंड था, आपकी बात से मुझे याद आया, तो वो केमिस्ट्री में बहुत ही कमजोर था, तो उसको लोग बोला भी करते थे बड़ा कमजोर है। एक बार उनके माता पिता ने भी शायद उसकी मरम्मत कर दी इसी बात को लेके कि तो सब में ठीक है इसमें ही, तो उसने इसे एक वो एक टर्निंग पॉइंट था उसके लिए कि जब माँ ने या पिताजी ने उसकी थोड़ी सी पिटाई कर दी और कुछ कड़े शब्द बोल दिए, तो उसने वहां से एक पॉइंट ली कि मुझे एक चैलेंज के रूप में इस केमिस्ट्री को लेना है और मैं इसमें बेस्ट करके दिखाऊंगा। और ब्रदर जी, अगले ही वर्ष उसने केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स हम लोगों की क्लास में लिए। तो क्या इसे एक चैलेंज के रूप में भी लिया जा सकता है?
बहुत अच्छी बात है कि हम उस हार को स्वीकार न कर लें और उसे एक चैलेंज के रूप में मान लें कि ठीक है मैं मैथमेटिक्स में कमजोर हूँ ना, सब यही समझते हैं ना, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। तो निश्चित रूप से वो सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है। जब हम मन बना लेते हैं, जब हमारे मन में एक विशेष उमंग पैदा हो जाती है, एक टारगेट हो जाता है, अच्छा मेरे मैथमेटिक्स में 50 नंबर आते हैं, अब के मुझे 80 ला के ही दिखाने हैं, तो ब्रेन की शक्तियां एक साथ एकजुट होकर हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने में लग जाती हैं। ये बड़ी सूक्ष्म गति है, इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्गली लक्ष्य बनाना, हार न मानना, आगे बढ़ते रहना, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए परम आवश्यक है।
बिल्कुल, और पेरेंट्स या फिर बड़े या फिर साथी भी इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि यदि कोई कमजोर है तो उसे उस विषय की बार बार याद ना दिलाते रहें कि तो इसमें कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है,
बल्कि ये कहना चाहिए कि बेटा तुम केमिस्ट्री, अरे केमिस्ट्री तो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ी सी और मेहनत करो, जरा ध्यान दो, घबराओ नहीं इससे, तुम इसमें बहुत होशियार हो जाओगे, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, उमंग दिलाए। टीचर्स का भी ये काम है। हम जब 9th क्लास में ही आए थे तो फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी चालू हुई थी, उन दिनों अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते थे दोनों, तो हमारे जो टीचर थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, वो हमारी हर क्वेश्चन जो हम आंसर लिखते थे उस पर हाउ ब्यूटीफुल, फेयर, फाइन, बहुत अच्छा, वेरी गुड, हमें उमंग बढ़ता गया और वो सब्जेक्ट जो कोई पढ़े नहीं थे उससे पहले बहुत अच्छे हमें लगने लगे। तो टीचर्स को भी उमंग दिलाना चाहिए, माँ बाप को भी उमंग दिलाना चाहिए, और बच्चों में निराशा आ जाती है क्योंकि उनके सामने कंपैरिजन होता है, एक कंपटीशन भी चलता रहता है, कहीं ना कहीं वो फेलियर जैसी स्थिति में भी रहते हैं, लेकिन उन्हें उमंग दिलाएंगे तो उनकी ये ब्रेन की शक्तियां जागृत रहेंगी।
बिल्कुल दादा जी, एक मेल और आया है आकांक्षा गुरासिया का सूरत से, ये कहती है व्हेन आई एम स्टडीइंग आई ऑलवेज डाउट वेदर आई वुड बी एबल टू रिमेंबर ऑल दिस एंड रिप्रोड्यूस ऑल दिस इन द एग्जाम, हाउ टू ओवरकम दिस। ये भी एक बड़ी चीज है कि मैं भूल ना जाऊं, याद आएगा या नहीं आएगा, वही वाली बात इनके साथ।
इसमें मैं बच्चों को एक बात कहूंगा कि कई बच्चों में एक मेंटलिटी बन गई है रटने की
जी।
अभी ये टीचर्स का भी कर्तव्य है कि वो केवल रटाएं नहीं, अंडरस्टैंड कराएं, उसका मीनिंग बताएं, क्या कहा जा रहा है। तो अगर बच्चे उसको समझने लगेंगे, रटेंगे नहीं केवल, जरूर मेरी बात सब समझ रहे होंगे, समझने लगेंगे, तो उनके लिए वो चीज़ इंटरेस्ट की बन जाएगी और बिल्कुल इजी हो जाएगी। यही काम इनको करना है कि उस चीज़ को समझें, वो पढ़ क्या रही है, उसका असली मीनिंग क्या है। रटने की कोशिश ना करें, शब्दों पे ध्यान ना दें, उसको समझें। समझने के बाद अगर रटेंगे तो वो अधिक समय तक याद रहेगा, इसलिए ये घबराएं नहीं अब। और ये जो इनके मन में एक डाउटफुल फीलिंग रहने लगी है, ये बच्चों के लिए सबसे खतरनाक होती है। और संसार में भी कई मनुष्य ऐसे होते ही हैं, वो अपने में भी डाउट करते रहते हैं और दूसरों में भी बहुत डाउट करते रहते हैं। तो इन्हें अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पुनः मैं वही याद दिलाऊंगा कि सवेरे उठकर, सोते समय भी और जब पढ़ें तब भी 3 बार ही कम याद जरूर करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मूर्त हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं जो पढ़ूंगी मेरी बुद्धि सब ग्रहण कर लेगी, मेरे पास बहुत सुंदर बुद्धि है, मुझे विवेक शक्ति प्राप्त है, ये भगवान का वरदान मेरे साथ है। तो ऐसे अच्छे अच्छे विचार करें तो इनका डाउट खत्म होगा, इनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और तब ये पाएंगे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एक्चुअली चलता सब कुछ ठीक है, उनका डाउट उन्हें ऐसा
परेशान करता रहता है। चलिए बेटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने सुंदर प्रकाश पुनः हमारे विद्यार्थियों को दिया है। निश्चित रूप से इस वर्ष उनकी परफॉर्मेंस बहुत 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 अच्छी रहेगी इन सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस।
बस हमारी भी यही शुभ भावना रहती है सब बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे परिवार की भी शान, माता पिता का नाम रोशन करने वाले, उनका अपना जीवन भी इन चीजों पे आधारित रहता है ना। वो चाहते हैं अच्छे से अच्छा हो, जब रिजल्ट आए तो उनकी भी वाह वाह चारों ओर होने लगे। तो हमारी शुभ भावनाएं हैं कि सब बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें और जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया उसे ज्यादा प्राप्त करें।
बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी आपका। मित्रों, एग्जाम की बात हो रही है और जहाँ तक फियर की बात है, तो फियर को यदि एक्सप्लेन किया जाए तो आता ही है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। हम जो चीज़ नहीं है मन में क्रिएट कर करके क्यों भयभीत होते रहें, वास्तव में इसे इंजॉय करने की आवश्यकता है, डर को दूर भगाने की आवश्यकता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो हमारी चल रही थी वो ये कि यदि कोई हमें ये कहता भी है कि तुम इस सब्जेक्ट में पुअर हो, कमज़ोर हो, बचपन से हम ऐसे चले भी आ रहे हैं ना, तो भी अब इसे बदलने की ज़रूरत है। आज की चर्चा में एक विशेष बात जो मुझे लगी है जिसे हमें अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, कोई भले कह रहा हो तुम इस विषय में कमज़ोर हो, कोई नहीं, उसे हम डोंट केयर करें, उसे अपने अंदर ना जाने दें। क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, एक हॉस्पिटल के बाहर लिखा हुआ था, पहली लाइन लिखी हुई थी कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उसे एक कुत्ते ने काटा था, उसे 14 दिन यहाँ रखा गया, 14 दिन के बाद वो ठीक होके चला गया। दूसरी लाइन लिखी हुई थी कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उसे एक बिल्ली ने काटा था, वो भी 10 दिन में ठीक होके चला गया। अगली लाइन थी, उसमें लिखा था कि एक चूहे ने काटा था पेशेंट को, उसे भी 5 दिन तक ठीक किया गया, ट्रीटमेंट चला गया। चौथी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, चौथी लाइन ये थी कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उसे एक आदमी ने काटा था और वो अभी तक अंदर है, वो ठीक होके नहीं जा पाया है। तो आदमी मुंह से नहीं काटता लेकिन अपने बोल से काटता रहता है, ये कहता रहता है कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम तो पुअर हो, तुम तो कमज़ोर हो, तुम नहीं जीत पाओगे, तुम सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हारी इतनी परसेंटेज आ ही नहीं सकती। ये सारी जो नेगेटिव बाइटिंग है ना, ये व्यक्ति देता रहता है, हमारे अंदर डालता रहता है ताकि हमारी परफॉर्मेंस कमज़ोर हो जाए। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, लेकिन यदि कोई ऐसा कर भी रहा है आपके आसपास, इसे अपने अंदर, अपने चित्त में, अपने मन में ना लें, लेकिन एक सुंदर विश्वास के साथ, ईश्वर मेरे साथ है और मैं अपना बेस्ट अवश्य करूंगा। तो कोई शाबाशी दे या ना दे, रोज ना अपना पीठ खुद ऐसे थपथपा लिया कीजिए कि शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ग्रेट हो, तुम बहुत महान हो और तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा करना है और तुम करोगे। देखिएगा, इन विचारों से और राज्यों के सुंदर अभ्यास से निश्चित रूप से इस वर्ष आपने जो लक्ष्य बनाया है उसे आप अवश्य प्राप्त करेंगे। पूरे समाधान परिवार की ओर से, पूरे ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आपके चेहरे के साथ साथ आपके परिवार, आपके टीचर्स के चेहरे पे भी खुशी झलके, और आप हमें अंत में, साल के अंत में रिजल्ट आने के बाद मिठाई अवश्य भेजें। अपना ख्याल रखिएगा, पुनः कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।